ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी अपने आप से पूछना, हमने ओम शांति बरोबर ध्यान से और प्रेम से कहा या इधर उधर देखते आवाज सुनते और आवाज से आवाज मिलाया? ये तो आप सब जानते हैं, ओम शांति कहने का भाव, कहलाने का भाव अर्थ यही है। भले ही पहले सब साइलेंस में बैठे होंगे, परंतु आने की रीत हर एक का अपना अपना टाइम होता है। एक ही समय पर सब साथ बैठ जाएं, इसलिए अटेंशन अपना ऐसा बन जाए, जब ओम शांति कहते हैं तो अंदर का अटेंशन बस एक बाप में पूरा लगा रहे और बाप की सिख्याएं अच्छी रीत से, कोई ना कोई सिख्या हमें याद आती रहे। और सबसे पहली सिख्या कौन सी याद है? जब हम बोलना शुरू करें तो हमें ये अटेंशन रहे कि ओम शांति बोलने अथवा योग पूरा होने के बाद हम मुस्कुराते हुए बोलें। वैसे भी देखो, किससे मिलेंगे, जब पहले किससे मिलते हैं नजदीक से, तो मुस्कुराते हो या नहीं मुस्कुराते हो? नहीं मुस्कुराते हो? मुस्कुराते हो ना, और कुछ मिलने के अच्छे शब्द बोलेंगे। तो ये भी हमारा, जब हम ओम शांति कहते हैं तभी से हमें याद आ जाना चाहिए। वैसे तो बाबा कहते हैं सदा मुस्कुराते रहो, जब हम योग में बैठें तब भी हमारा चेहरा ऐसा हो जो दूर वाला देखे तो उनको लगे कि ये अंदर में किससे बात कर रही है, किससे मिल रही है। बाबा ने हमें यह बार बार कहा है कि बच्चे सदा मुस्कुराते रहो, और मुस्कुराते हम तब हैं जब कोई खुशी की बात होती है, जब कोई अच्छी बात याद आती है, जब कोई हम किससे मिलते हैं, लगता है आज हम इससे मिल रहे हैं या बहुत समय के बाद मिले हैं कोई नजदीक, तो फिर अंदर में वो खुशी होती है और उस खुशी का चिन्ह चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और जब हमें बाबा मिला है और बाबा से इतना ऊंचा ज्ञान जिससे हमें बाप की पहचान है कि हम किस बाप के बच्चे हैं, और ये हम सब आपस में एक पिता की संतान, आपस में एक ही परिवार है, और ये हमारा ईश्वरी परिवार है। ईश्वरी परिवार याद करते जब हम एक दो को देखें तो ऑटोमेटिकली हमारा चेहरा मुस्कुराना शुरू कर देगा, क्योंकि ईश्वरी परिवार से हमारा ये मिलन है। ऐसा अगर हम समझ करके एक दो को देखते हैं तो स्वाभाविक है हमारे अंदर एक दूसरे मिलने की खुशी ऑटोमेटिक जागृत होती है और उस खुशी का चिन्ह है मिलते समय हमारे चेहरे पे वो खुशी की रौनक आ जाती है। और अगर इस प्रकार से हमारा एक नेचर बन जाए, वो नेचर हमें बहुत बातों में बड़ी मदद देंगी। आप भले इस बात पर सोच के देखना, वैसे तो आप भी सब टीचर्स बने हैं, चलो कोई को कितने बरस कोई को कितने बरस, परंतु है तो सब टीचर्स बने। तो टीचर्स का ऑटोमेटिकली यही काम है, जब भी एक दूसरे चाहे स्टूडेंट से मिले चाहे हम शरीक टीचर से मिले, और ये तो एक तरफ हम शरीक है, दूसरी तरफ ये सारा हमारा ईश्वरी परिवार। ईश्वरी परिवार कहने से परिवार का सदस्य वो तो परिवार आपस में जब भी मिलेगा एक दो को देख के खुश होंगे, और वो अच्छी खुशी खुशी की बातें कब मिले थे ऐसे मिले थे ये हुआ बातें करते रहेंगे। तो भल ये हमारा ईश्वरी परिवार अथवा मर जीवा जन्म के बाद का परिवार है, परंतु जब हमें इतने बरस बीत चुके इस जीवन में तो ये हमारी एक नेचुरल जीवन पारिवारिक जीवन और पारिवारिक भी नेचुरल जीवन। जब कोई भी परिवार वाला कब भी आपस में मिलेंगे तो खुशी खुशी से मिलेंगे, और परिवार के नाते से कोई न कोई ऐसी बात एक दो को कहेंगे जो एक दो की बात सुन करके खुश हो। हमारा भी आपस में मिलन खुशी संपन्न, और एक दो को बाबा कहते हैं जब आपस में मिलो तो एक दो को याद दिलाते रहो, और उसका उसमें नेचुरल ये ओम शांति शब्द जो बाबा ने हमें एक कहे महामंत्र के रीति से मिला हुआ है, अगर ये हमें सदा याद है तो हमारा आपस में मिलन खुशी का ही होता रहेगा। इसलिए हमें सदा याद रहे हम बाबा के बच्चे हैं, ये हम सबको याद है। एक ही परिवार है ये हम सब समझते हैं, परंतु ये जो हम समझते हैं वो हमें सदा एक दो को देखते यह स्मृति बनी रहे, पारिवारिक स्मृति। जब हमें याद रहती है तब हम कोई किस भी रीति से आपस में बात करेंगे तो प्यार से बात करेंगे, और हमारे बाबा की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार हमें आपस में वही चर्चा करनी है जो बाबा ने हमें बताई है। आपस में मिलो, जो हमें ज्ञान का खजाना मिलता है, जो हमें बाबा से खुशियां मिली है, जो हमें ऐसा ऐसा समाचार जो सुन करके हम खुश हों, बाप के संबंध में परिवार के संबंध में सेवाओं के संबंध में इस प्रकार की हमारी आपस में बातचीत लेन देन एक दो को खुशी दिलाती है। और समाचार जब सेवाओं का सुनाते हैं तो उससे हमें ये परिचय होता है कि हर एक अपने सेंटर की किस किस प्रकार के सेवाएं करते और आगे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ये अभी मैं नई दुनिया की स्थापना का कार्य करा रहा हूँ, बाबा ने हम बच्चों को नई दुनिया के लिए निमित्त बनाया है। करण करावनहार तो बाप है, लेकिन बाप करावनहार होकर हमारे से करा रहा है। तो हम आपस में मिले तो नई दुनिया की बातें, और नई दुनिया की बातों में पहले पहले जो बाप के महावाक्य है वो हम एक दो को याद दिलाएं। आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि शुरू शुरू में जब हम यज्ञ में आए, इसको हम रुद्रावनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं ना, तो जब आए और सचमुच ये प्रैक्टिकल है, जब हम आपस में रहते तो सब इकट्ठे ही थे, काम भी सब इकट्ठे करते थे, परंतु शुरू में बाबा बोलते थे जब भी आपस में मिलो तो जो ज्ञान का खजाना तुमको मिलता है बाप से उसकी आपस में लेन देन करो। ओम शांति। आज की टॉपिक है अनुभव की अथॉरिटी, ऐसा है ना? तो पहले तो मैं समझती हूँ इसी विषय को हम, वैसे तो आप सब जानते हैं, हमें बाबा ने यह ज्ञान और योग जो हमारी पढ़ाई की, ये दो मुख्य सब्जेक्ट हैं। और ज्ञान जिसमें बहुत बड़ा विस्तार है, और योग जिसमें हम जितना अधिक समय एकांत में बैठकर इसका अभ्यास करें। शुरू शुरू में बोलती हूँ, अभी तो भले हम कहते हैं, बाबा भी कहते हैं, बच्चे कोई एक जगह बैठने की आवश्यकता नहीं है, योग तो हमारा चलते फिरते लगा रहना चाहिए, ये अभ्यास हमें अपने में डालना है। परंतु जब तक ये अभ्यास पक्का हो जाए, जो हमारा योग का ऐसा अभ्यास हो जो ऑटोमेटिकली चलते फिरते बात करते कर्म करते हमें बाप की याद बनी रहे, चाहे हम मुख से कोई भी बात करें, चाहे हम कोई भी कार्य में लगे रहें, परंतु ये अभ्यास, तो ये स्थिति हमारी अभ्यास, अपने अंदर के अभ्यास के द्वारा हम अपनी ये स्थिति बना सकते हैं। तो पहले पहले तो मैं कहेंगी, जब हम ज्ञान में आते हैं, यूं तो अभी के समय अनुसार जबकि हर एक ज्ञान में आए हैं, हर एक अपने आप को देखे कि मैं जब ज्ञान में आई तो किस इंटरेस्ट से आई, उस समय क्या समझ के आई, वो तो हर एक अपना अपना जानते हैं। परंतु मेरे कहने का भाव है, जब टॉपिक है, कौन सी टॉपिक है, अनुभव की अथॉरिटी द्वारा, ऐसे है ना? तो अनुभव की अथॉरिटी द्वारा कौन सा समाधान स्वरूप बनना है, इसका मतलब पहले हमें इतना अनुभव हो जो हर बात के लिए जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, चाहे ड्रामा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा से संबंध का ज्ञान, याद की यात्रा में रहने का ज्ञान, तो पहले पहले तो हमें अपने अंदर इस बात को देखना है कि सचमुच जो पढ़ाई अभी बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, जो भी उसके अंदर पॉइंट्स हैं, जो भी समझानी है, बरोबर उन्हीं समझानी के अनुकूल मैंने अपने जीवन के अंदर ऐसी स्वयं की धारणा बनाई है। अर्थात अनुभव के द्वारा आता है, हमें वो अनुभव जो कोई भी बात आवे हम उसको उसी रीति से समझने की कोशिश करें, जो ज्ञान जो समझ बाबा ने दी है हम अपनी समझ ज्ञान युक्त, क्योंकि दुनिया में रहते अपने लौकिक घरों में रहते लौकिक संबंध से अपना संबंध जो बंधन बन जाता है ऐसा जुटाया हुआ रहता है। ज्ञान में आने के बाद संबंध को भल संबंध शब्द का अर्थ है स्नेह का बंधन, परंतु वो बंधन रूप न हो। जब हम बाबा के बने तो जैसे लौकिक में हमारा संबंध में प्यार बना रहता है, संबंध के साथ हर एक बात उसके लिए जो भी कुछ हम करेंगे तो हमें वो संबंध की याद जरूर आएंगी। इसी प्रकार से हमारा बाबा के साथ इस परिवार के साथ ऐसा ही संबंध बना रहे, जो हम जो कुछ करें जो बाबा की शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं के अनुकूल हम अपने जीवन को ऐसे कर्मों में लाते रहें। जैसे आप सब जानते हैं शुरू में हमें आत्मा का लेसन मिला, तो आत्मा के लेसन के लिए कभी कभी मैं बताती हूँ कि जब हमें शुरू में ये लेसन मिला था तो अंदर में हमें ये बात ऐसी लग गई थी जो चलते फिरते अपने आप कोई कहे या न कहे, परंतु अंदर ही अंदर अपने को बार बार याद दिलाते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति हूँ, मैं शरीर से न्यारी हूँ, परंतु न्यारी भी हूँ और इसको चलाने वाली भी हूँ। तो मुझे इन कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो मेरा पाप का खाता बने, ऐसा कोई भी मुझे संकल्प ऐसा कोई भी विचार मुझे नहीं आना चाहिए जो मेरे लिए यथार्थ नहीं माना जाए। इसके लिए जो भी हम सुनते थे अर्थात जो भी हमें ज्ञान की बातें समझाई जाती थी, अभी आप तो सब टीचर्स बने हैं, जिज्ञासु आते हैं तो हम सभी बातें धीरे धीरे उसको समझाते हैं, लेकिन हमें पहले ये अपने लिए रखना है हर ज्ञान की बात को हमने अपने अंदर इतना मनन चिंतन करके उस बात का हम ऐसा अनुभवी बन जाए जो उसके अनुकूल कोई भी बात आए तो हम स्वयं की शक्ति से उस बात को पार कर लूं। कई बातें कभी कभी ऐसी आती है हमें पसंद नहीं आती है, ये मेरे योग्य नहीं है। अभी योग्य क्या है क्या नहीं है, अभी जब हम कोई भी कार्य में लगे हुए हैं और उसमें अनेक भाई बहने साथ हैं, हर एक की पसंद अपनी है, और जब संगठित रूप में हम कार्य करते हैं तो मेरी पसंदी क्या है सेवक केवल वो नहीं चलेंगी, पर जिस भी प्रकार का कार्य होता है उसको उस समय समझ करके मेरी समझ ऐसी हो जो हर बात को हम ज्ञान से समझकर और उसमें अपने को चलाते रहें, जो कोई भी बात की नेगेटिव फीलिंग मेरे में जागृत न हो। अब ये चाहिए पहले 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 हमारे में बाप के प्रति निश्चय, दूसरी बात कि मुझे क्या बनना है उसका स्वयं के अंदर पक्की दृढ़ता, जो बनना है उसके लिए मेरे पास कंडीशन नहीं होता है, परंतु जो भी पढ़ाई मुझे पढ़ाई जाएंगी मुझे अपना लक्ष्य पक्का रख करके जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है उसको उसको अच्छी रीत से उनके अर्थ को समझ करके और जो मैं बनना चाहती हूँ उसमें लगाती जाऊंगी, किस प्रकार उसका मुझे फायदा मिलता है या किस प्रकार कहाँ कहाँ मैं उसको नहीं एडजस्ट कर सकती हूँ, इन बातों को मुझे स्वयं अंदर ही अंदर समझ करके अपनी वो शक्ति जागृत करनी पड़ेगी। जो पढ़ाई मुझे पढ़ाई जाती है उस पढ़ाई को अच्छी रीत से उस भाव अर्थ को समझ करके और मैं अपनी जीवन में उसको पूरा पूरा याद रखूं और उसके अनुकूल स्वयं को चलाती रहूं। पढ़ाई इसलिए पढ़ी जाती है, लौकिक में भी पढ़ाई से बुद्धि विशाल होती है, पढ़ाई में जो कुछ सिखाया जाता है वो हमें जीवन में आगे चल करके काम में आता है। जिस प्रकार लौकिक पढ़ाई हमारे जीवन के लिए एक आगे बढ़ने का साधन है, वैसे ये हमारी ईश्वरीय पढ़ाई हमें स्वयं जो आत्मा इस शरीर के अंदर छिपी हुई है परंतु आत्मा की शक्ति शरीर से काम कराती है ये हमें अंदर से पक्का हो, लेकिन साथ साथ आत्मा के गुण क्या है वे गुण अच्छी रीत से समझ करके, समझाते तो है ना टीचर्स, परंतु समझना कहने का भाव मेरा ये है कि जो आत्मा के गुण है उन गुणों को समझ करके गुणों का अच्छी रीत स्पष्टीकरण करके मैं अपनी जीवन में उन गुणों को धारण करने का पूरा पूरा प्रयत्न करूं। अगर मैंने ये लक्ष्य अपने में पक्का रखा, समझो कोई बात में मैं पूरा नहीं समझ पाती हूँ फिर भी जो उसका भाव अर्थ है उसको अच्छे से समझो। शुरू में समझाया जाता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, हम आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई है। चलो ये शब्द तो हमने सुना और समझ में आ गया, परंतु इसका अर्थ इसका स्पष्टीकरण हम अपने अंदर में स्पष्ट करके और उसको अपने में धारण करने का पूरा पूरा प्रयत्न करें। जब शांत स्वरूप हूँ, जैसे हम कभी कभी मिसाल देते हैं ना, कोई बात हमको अच्छी नहीं लगती है, कोई बात में हमें फीलिंग आ जाती है, तो शुरू में हम ऐसे ही कहते थे अरे आत्मा है, आत्मा को क्या लग गया, चलो उसने दो शब्द बोल दिया, तुमको पसंद नहीं आया, पर तुमको उसमें लगा क्या, क्यों इसका दुख करती हो, ये तो बिल्कुल बचपन की समझानी है। अभी तो इसमें हम सब प्रवीण हो गए हैं नॉलेज के अंदर। पहला हमें अपना लक्ष्य जो ज्ञान की धारणा है, चलो कोई कुछ भी कहता है, ज्ञान क्या कहता है, जो बात अच्छी न लगे उसको सुनते हुए भी नहीं सुनो। ज्ञान कहता है जो बाबा ने मुझे समझाया है, हम उन बातों को बार बार याद रखते हुए अपने मुख से ऐसा कोई बोल न बोलें जिससे दूसरे को दुख हो। अगर कोई दूसरा मुझे बोलता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है तो उस बात को मैं अपना न समझ करके छोड़ दूं। चलो उसने बोला पर मेरे योग्य नहीं रहा तो मैं उसका दुख क्यों करूं? क्यों? मुझ आत्मा का स्वभाव है प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख देना सुख लेना। जब मेरा स्वरूप ही ये है तो मैंने अपने स्वरूप का अनुभव किया है। जब मेरा स्वरूप है सुख देना सुख लेना तो उसने जो कहा मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं उसका दुख क्यों करूं? दुख लेना मेरे फीलिंग की बात है। जब मेरे फीलिंग में है भाई मुझे अच्छी नहीं लगती है, अरे हर एक जो समझता है अपने समझ के अनुसार काम करता है, मैं अपने समझ के अनुसार काम करूं, मुझे किससे दुख लेना नहीं है। उसने जो बोल बोला अगर मेरे योग्य नहीं लगता है मुझे तो मैं उसको बार बार याद करके खुद को दुखी क्यों करती हूँ? क्योंकि मैं आत्मा तो सुख स्वरूप हूँ, मैं भगवान की बच्ची, कोई ने दो शब्द बोला और उसमें मैं जल्दी दुखी हो जाऊं? दुख मेरा गुण नहीं है, आत्मा का गुण ही है सदा शांत और सुख देना। भगवान के बच्चों का गुण, जैसे भगवान हम सबको सुख देता है तो शुरू में हम लोग हर बात अपने से लगाते थे, कोई कैसा भी करे, क्योंकि हर एक, ये तो अभी तो ज्ञान का विस्तार है हमें, हर एक जो भी कर्म करता है अपने अपने पाठ के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार। और मुझे जो कुछ अपने लिए करना है, जो बाबा ने मुझे समझ दी है उस समझ के अनुसार मुझे अपने जीवन में हर बात को समझना, जीवन के कर्मों में लाना और उसका उस प्रकार से उपयोग करना। तभी तो हमारा अनुभव वो रहेगा जो कैसा भी कोई पाठ बजाए परंतु बाबा की शिक्षाओं के अनुसार हम सबसे गुण उठा करके गुणों को धारण करती जाऊं, बाकी जो बात मुझे समझ में नहीं आती है अथवा जो मुझे समझो अच्छी नहीं लगती है उसको मैं छोड़ दूं। जैसे हम कहते हैं ना, हंस का क्या काम है? हंस जो चीज देखेगा मेरे योग्य नहीं है वो छोड़ते आगे चलता जाएगा, जो उनके योग्य है वो उठा लेगा। तो मैं भी हंस के समान, जो मेरे योग्य है, जो अच्छी बात है, मैं उसको सुन करके धारण कर दूं। जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, जैसे कि भले उसने कहा पर वो मेरे लिए नहीं है, सहज भाव से अगर हम छोड़ देते हैं तो हम फीलिंग से परे रहते हैं। और फीलिंग एक ऐसी बीमारी है जो हमारे अंदर फीलिंग के कारण बुरे संकल्पों का विस्तार होता ही जाएगा। तो बुरे संकल्पों से स्वयं को बचा के रखना, ये मेरा काम है कि मुझे बुरे संकल्प अपने में जागृत नहीं करना है। मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प, क्योंकि मैं सत्य पिता परमात्मा की संतान हूँ। सत्य पिता के द्वारा मुझे वह ईश्वरी समझ मिल रही है, जिससे बाबा मेरे अंदर उन गुणों की धारणा चाहते हैं, जिन गुणों को दैवी गुण, जिन गुणों से मैं हर एक को सुख दे सकूं, न किसको मैं दुख दूं, न किससे मैं दुख लूं। तो जब मेरी समझ में हर बात अच्छी रहेगी, तो न मैं दुखी होंगी, न मैं किसको दुख दूंगी। अगर फाउंडेशन में शुरू शुरू में हम लोगों को यह कहा जाता था, कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कहा जाता था जैसे कर्म मैं करूंगी, मुझे देख के और करेंगे। तो इस कारण हमारा अपने कर्मों पर, कर्म में बोल, व्यवहार, देखना, सुनना, ये सब बातें आ जाती हैं। तो इन बातों पर हमारा इतना ध्यान रहता था कि हम अपने मुख से ऐसा कोई बोल न बोले जो दूसरे को अच्छा न लगे, अथवा कोई ऐसा बोलता है तो वो हम अपने में धारण न करें, जिससे मेरे उनके प्रति व्यर्थ संकल्प चले। व्यर्थ संकल्पों का प्रभाव मुझ पर अर्थात आत्मा पर पड़ेगा, जिस कारण अगर मेरे चिंतन में उनके प्रति बुरी भावनाएं जागृत होती रहेंगी, तो मेरा व्यवहार कैसा रहेगा। तो पहले तो मुझे अपना अनुभव ऐसा बनाना है जिस अनुभव में कोई की भी नेगेटिविटी हम स्वयं में धारण न करें, किसी की भी बात सुन करके अथवा देख करके हम अपने को डिस्टर्ब न करें, मुझे नहीं, क्योंकि बाबा ने अभी हमको इतना ऊंचा ज्ञान दिया है। जब बाबा कहते हैं हम ही सो देवता थे, अगर ये बात हम अपने को बार बार याद दिलाएं, तो जब मैं आत्मा जब पहले सृष्टि मंच पर आई, तो मेरा देवता स्वरूप, देवताओं के अंदर जिनको दैवी गुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न माना जाता है, संपूर्ण निर्विकारी, विकार का उनमें कोई अंश नहीं, किसके ऊपर हमें गिलानी आती है, जोश आता है, ये भी विकार है। कोई वस्तु में मेरी इच्छा जाती है, ये भी विकार है। अगर मेरे को इच्छा है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दूसरे को मैं देखती हूँ और मेरे को दिल होती है, तो ये इच्छा हुई। इच्छा, बाबा कहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या। और सहज स्लोगन, इच्छा कभी भी हमें अच्छा बनने नहीं देंगी। इच्छा है तो चाहिए चाहिए चाहिए, माना मैं मांगती ही रहूं, मेरे अंदर मांगने के संस्कार बनते जाए, मैं सर्वशक्तिमान की संतान, जिससे मुझे सर्व प्राप्तियां होती हैं, जब मैं खुश हूँ, जब मुझे सदा सुख की फीलिंग है, जिसको देखती हूँ उसे खुशी है, तो फिर मुझे ये चाहिए ये चाहिए, कोई भी इच्छा उठ नहीं सकती। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों के लिए यज्ञ के अंदर हर सुविधाएं रखी है, जिन सुविधाओं के में बाबा हमें चलाते हैं, आपे ही भोजन तैयार होके मिले, आपे ही समय पर बेल बजा और हम जाके भोजन पे बैठे, भोजन हमें मिल गया, उसको हम प्यार से बाबा की याद से, यज्ञ का भोजन प्रसाद माना जाता है। अगर शुरू से हम अपने में वह भावनाएं रखते चलते हैं, तो वे भावनाएं हमें अंदर से हमारे बुद्धि को बड़ा शुद्ध रखेंगी, जिस कारण हमारा हर वस्तु में शुभ भाव, हर व्यक्ति के प्रति शुभ भावनाएं, ऐसे अगर हमारी अंदर की वृत्ति शुभ चिंतन से भर जाएंगी, तो शुभ चिंतन हमें ऐसा शुद्ध बना देगा, जिस शुद्ध बनने से मेरे अंदर इन दैवी गुणों की जागृति होती जाएगी। जिन दैवी गुणों से हम अपनी जीवन में जो भी कर्म करेंगे, जिसके भी संपर्क में आएंगे, उसमें मुझे कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव संकल्प, बुरा संकल्प, व्यर्थ संकल्प, कोई के प्रति दुर्भावना, ये हमारा लक्षण नहीं है। मुझ आत्मा का ये गुण नहीं है। मुझ आत्मा का गुण है, जैसे बाप को सब बच्चे प्यारे हैं, वैसे मुझे भी ये सब भाई बहन बड़े प्यारे लगने चाहिए। जब मैं जानती हूँ हर आत्मा अनेक जन्मों का चक्कर लगा करके अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना पाठ बजा रही है, तो कर्मों के अनुसार जैसा उनका पाठ है वो अपना बजा रही है, मैं भी वो बजा रही हूँ। पर अभी जब मुझे बाप के द्वारा वो शक्ति मिल रही है, वो ज्ञान समझ मिली है, जो कुछ हमने पास्ट में किया है उसका जो भी बुरा असर, बुरी रिजल्ट हमें इस जीवन में मिली है, परंतु अभी बाप जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है, उनसे हमें वह पहले ज्ञान की शक्ति और ज्ञान के साथ साथ योग की शक्ति, अर्थात मैं अपने मन बुद्धि को बाप के साथ बार बार बाप की शिक्षाओं को हम अपने अंदर याद करते, उसका चिंतन करते रहें, जिस बात का हम चिंतन करती रहेंगी, स्वाभाविक है वो हमें सदा याद रहेंगी, अर्थात मेरा चेतन स्वरूप उन्हीं चिंतन के अनुकूल बना रहेगा। और अगर मेरा चेतन स्वरूप दैवी गुण संपन्न बन जाता है, तो वो दिव्यता मेरे चेहरे पे, मेरे जीवन के कर्मों में आती रहेंगी। मैं जो भी कर्म करूंगी, दिव्यता संपन्न अर्थात शुभ भावना संपन्न हर एक के प्रति, क्योंकि ये जो जीवन की धारणा है वो विशेष अपने लिए है। हम दूसरे को देख करके ये ऐसा करती है, अगर मैं भी इनके साथ ऐसा नहीं करूंगी तो सदा ये मेरे को ऐसा करती रहेंगी। इस प्रकार की जो हमारे अंदर भावना या विचार जागृत होते हैं, ये वास्तव करके ज्ञान की समझ नहीं है। ज्ञान अर्थात जिस बात में हम, जिस बात से हमें भी प्राप्ति हो, समझ, ज्ञान माना सच्ची समझ। हम जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ज्ञान हमें अच्छी समझ देता है। जिस अच्छी समझ को हम जितना अपने बुद्धि के अंदर चिंतन करेंगी तो मेरी बुद्धि उस चिंतन से शुद्ध बनेगी, जिससे मेरी दृष्टि, वृत्ति, कर्म, व्यवहार सब अच्छा होता रहेगा। जितना जैसे मैं करूंगी तो मुझे देख के और भी ऐसे करेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें अभी ज्ञान और योग की शक्ति दे करके निमित्त बनाया है औरों को भी ऐसा सिखाने के लिए। परंतु सिखाने के पहले स्वयं को सिखाना है, स्वयं सीख करके ऐसा सैंपल बनना है, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी बात, हम उसको ज्ञान के चिंतन से शुभ भावना संपन्न समझ करके उससे वो फायदा ले, और उसको ज्ञान युक्त समझ करके अपने जीवन के कर्मों में यथार्थ रीति से यूज करें, जिससे हम न और को दुख दें, न मेरे अंदर कोई बुरे विचारों का प्रभाव जागृत हो। अगर शुरू से लेकर हम अपने पर ये अटेंशन रखते हैं, शुरू से लेकर हम ये समझें, जब हम सीखने आए हैं, जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को हमें अंदर ही अंदर पूर्ण रूप से बुद्धि में समझना है और उसी यथार्थ समझ से हमें अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म कराना है। हम ऐसे नहीं कह सकेंगे ये तो मेरे से हो गया, मैं चेतन आत्मा सदा जागृत हूँ, आत्मा के सिवाय शरीर के कर्म इंद्रियां कोई कर्म नहीं कर सकती है, आंखें भी तब देखती है जब मैं आत्मा इसमें विराजमान हूँ, आत्मा सदा जागती ज्योत है ऐसे माना जाता है, क्योंकि आत्मा का रूप ही ज्योति है, प्रकाश। वैसे अगर कहा जाए प्रकाश पर कोई दाग नहीं रह सकता है, वो भले ये जड़ पे प्रकाश की बात अलग है, परंतु एक टोटल प्रकाश उसको हाथ लगा सकते हैं। प्रकाश एक ऐसी शक्ति है जो शक्ति का काम करता है, प्रकाश का, हर बात की रोशनी, हर बात की यथार्थ पहचान। जिस यथार्थ पहचान को जितना हम अंदर में स्मरण करेंगे, याद करेंगे, तो हमारी जो स्वयं की यथार्थ पहचान है वो मैं यथार्थ अपना ओरिजिनल स्वरूप अर्थात उन गुणों से संपन्न बनती जाऊंगी। अगर इस प्रकार के ऊंच विचार हम अपने अंदर जागृत रखते हैं तो साधारण रीत से जो हम कर्म करते हैं, साधारण रीत से जो हम एक दो को कभी भी हल्के बोल बोल देते हैं, वह हमारे से नहीं होंगे। हम सदा सावधान रह करके, जो मैं हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान ने जो हमें श्रीमत दी है उस श्रीमत के अनुसार मुझे हर कर्म बोल भी हमें बड़ा समझ से स्वचिंतन के आधार से स्वमान के शक्ति से ऐसे हमें अपने में आदत डालनी है। अनुभव तभी हमारा बढ़ेगा जब हम जो बाबा ने हमें सच्ची नॉलेज दी है, सच्ची नॉलेज को सच्चाई के साथ स्वयं से हम सच्चे रह करके उन बातों को धारण करें पूर्ण रूप से, तो हमारे अंदर सच्ची शक्ति जो मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति भी बहुत बड़ी शक्ति है, जहाँ सचमुच शांति है वहाँ सहन शक्ति भी है, जहाँ शांति है एक दो के प्रति स्नेह भाव भी है। ऐसी ऐसी बातें हम अपने अंदर जितना चिंतन करते रहेंगे, इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे जो सुनते हो उसको अच्छी रीत मनन भी करो और उस पर मंथन भी करो। मंथन करने से जो उसकी महीनता है, जितना हम महीनता से समझते जाएंगे उतना हम शक्तिशाली अनुभव करते रहेंगे। जितना हमें यथार्थ सत्य अनुभव होता जाएगा तो हमारे अंदर उन सत्य दैवी गुणों की जागृति होगी और उन दैवी गुणों से संपन्न होकर हम कर्म करते रहेंगे। वो कर्म हम भी सुखदाई और हमारे से दूसरों को भी सुख का अनुभव होता रहेगा। क्यों? हमारा एक दो के प्रति स्नेह भाव बना रहेगा। ये जो दैवी गुण माने गए हैं, हम लोग भी उसका वर्णन करते हैं। टीचर्स मैंने हम जब जिज्ञासु नए को समझाते हैं तो देखो कितनी ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें समझाते हैं। जब हमारे समझ में है, समझ को हम अपने बुद्धि के अंदर दोहराते रहें और उसकी वास्तविकता समझ करके कितना ये गुण शक्तिशाली है, हम अगर इच्छा नहीं रखेंगे और भगवान के मत पर हम अपने को चलाएंगे ऑटोमेटिकली, परमात्मा मेरा पिता है, पिता के नाते आपे ही भी मेरी वह मनोकामना पूरी हो जाएंगी। हम कामनाएं रख करके अपने में ऐसी बुराइयां इच्छाएं धारण करते न जाएं, अपने अंदर ये पक्का रखें, इच्छा मात्रम अविद्या। सुना है इच्छा कभी भी अच्छा बनने नहीं देंगी। हमें अच्छा अर्थात मैं जो हूँ जैसी हूँ, सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता की संतान, जो परमात्मा सर्व का कल्याणकारी, सर्व का दुख हर्ता सुख करता, सर्व के प्रति रहम भावना, ऐसे पिता की मैं संतान, मुझ बच्चे का भी मुझ आत्मा का भी यही गुण, जो हमें अपने इस जीवन के अंदर धारण करना है। इन गुणों से क्या क्या फायदा है, कैसे इच्छा मात्रम अविद्या होते भी सर्व प्राप्ति संपन्न बाबा हमें बना देता है। अगर सचमुच मेरी धारणा ऐसी है तो ये जीवन का अनुभव है। जीवन में प्राप्ति अपे, क्योंकि भगवान के घर में है, भगवान के बच्चे हैं, और बाप हमें रोज वो शिक्षाओं से सजा रहे हैं। जितना हम शिक्षा संपन्न बनते जाएंगे, अपे ही वो मनोकामनाएं हमारी पूरी होती जाएंगी। बल्कि ये कहेंगे कामना जागृत होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ सुत ही प्राप्त होता रहेगा। हम केवल अनिष्ट हो करके, अपने से भी अनिष्ट और कार्य व्यवहार में भी अनिष्ट, कहते हैं बाबा भी कहते हैं, सच्ची दिल पर साहिब राजी। साहिब राजी है, उनके आगे सब कुछ हाजिर है, हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम अपना फाउंडेशन पक्का करें। जो शिक्षाएं बाप ने दी है, हम गुणों की लिस्ट लिखी हुई है, अपने अनुकूलता अनुसार हम कुछ मुख्य गुणों को अपने सामने रख करके उसका अंदर में विस्तार करें, अपने से बातें करें, और उन गुणों को यथारत रीति से धारण करने के लिए स्वयं स्वयं का दृढ़ संकल्प करें। दृढ़ता सुना है, दृढ़ता वो महान शक्ति है। जो दृढ़ता से हम संकल्प करते हैं, बाबा हमारा वो संकल्प पूरा करता है, और वो संकल्प की सिद्धि हमें खुशी देती है, खुशी के साथ शक्तिशाली बनाती है, शक्तिशाली के साथ फिर हमारे अंदर कोई व्यर्थ संकल्प उठ नहीं सकता, ऐसी हमारी स्वयं की धारणा पक्की हो जाती है। ऐसे ऐसे हम अपने आप से बातें करते रहें, अनुभवी बनाएं। जो शिक्षाएं बाबा हमें दी है, समझ हमारी बाबा ने बहुत बना दी है, समझ तो हमारी बहुत बड़ी है, दूसरों को समझाने के लिए हमारे में शक्ति है, उस शक्ति को हम स्वयं स्वयं पर भी प्रैक्टिस करें, और स्वयं में वो शक्तियां जागृत करें। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की संतान, जो बाबा मेरे से चाहते हैं मुझे करना ही है, चाहे उसमें मुझे सहन करना पड़े, चाहे उसमें मुझे मेहनत करनी पड़े, परंतु उससे जो सत्यता की शक्ति, जो दिव्यता की शक्ति मेरे अंदर जागृत होंगी सदा के लिए, वह अपना काम स्वयं ही करती रहेंगी, हमें किस भी बात के इच्छा की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमें भी बाबा इतना अपनी शक्ति देकर के शक्तिमान बनाता जाएगा और बाप ऐसे कार्य कराते रहेंगे जो हम भी देख करके, देखो मेहरबान बाप, अगर हम सच्ची दिल से बाबा की शिक्षाओं को अच्छी रीत समझ करके जीवन के कर्मों में लाते हैं तो कर्म से हमारा संस्कार बनता है, कर्म से हमारी प्रलब्ध बनती है। इन बातों को याद रखते हुए कर्म पर हमारा पूरा पूरा ध्यान, कोई भी कर्म श्रीमत के वृद्ध नहीं हो, श्रीमत के अनुकूल मैं कर्म करती रहूं, चाहे उस करने में थोड़ी मेहनत लगे तो हर्जा नहीं, परंतु सफलता। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाप का वरदान हम बच्चों को, लेकिन वो उन बच्चों से लगता है जो बाप के आज्ञाकारी, बाप के सुपात्र बच्चे, सदा बाप की शिक्षाओं को धारण करते, उनके इशारों पे चलने वाले। इस प्रकार हम अपने अनुभव की शक्ति को बढ़ाते जाएं तो हर बात में समाधान स्वरूप बनते जाएंगे। समय पर कोई ऐसी बात आएंगी भी तो भी उस समय हमें वो टच होगा, हम साइलेंस की शक्ति में रहकर इस स्थूल वातावरण से अपन को डिटैच करके बाप के साथ अपना पूरा पूरा बुद्धि योग लगा दें। बाबा हमें सही बात टच करा देंगे और उसी के अनुकूल मैं विश्वास पात्र बन करके, उसी निश्चय के आधार पर अगर हम कार्य करती है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा स्वयं पर अंदर की नजर, सदा मुझे बाप के शिक्षाओं के अनुकूल दिनचर्या भी जो नियम बाप ने बना के दिए हैं, उन नियमों से हम चलते रहें, ऑटोमेटिकली हमारी जीवन के अंदर वह शुद्धता, वह योग शक्ति। देखो फिर मन कहाँ भटके, क्यों भटके, किस लिए भटके, अगर यहाँ वहाँ की इच्छाएं हैं, दृष्टि में रूहान्यत कम है, हम नाम रूप को देख करके उन्हीं के अनुकूल सोचते हैं, तो फिर हमारे सामने ऐसी ऐसी बातें आती हैं। परंतु हम अपने जीवन का फाउंडेशन, अपना लक्ष्य जो बाबा ने दिए हैं, लक्ष्य के अनुकूल अपने लक्षण, लक्ष्य के अनुकूल हमारा सोचना, लक्ष्य के अनुकूल हमारी दृढ़ता बनी रहे, सफलता हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे ऐसे हम अपने से बातें करके सचमुच मैं आत्मा अंदर प्रकाश जो अंदर छिपा हुआ है अपने प्रकाश को मैं स्वयं प्रकाशित रूप अनुभव करूं, ऐसी स्वयं की तीव्र इच्छा जागृत रखते हुए योग साधना सहज करती रहूं, तो वह योगी जीवन के लक्षण जिसमें त्याग और तपस्या, पुरानी दुनिया, पुराना जो कुछ भी है, पुराना स्वभाव, पुराने संस्कार, पुराने संबंध, पुरानी देहिक वृत्तियां, इन सब से दूर होकर के ईश्वर की मिली हुई सिक्ख्याएं, श्रेष्ठ सिक्ख्याएं, सच्ची सिक्ख्याएं, जिसके अंदर इतनी सच्ची नॉलेज जो सर्व नॉलेज से ऊंची, ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंची नॉलेज, ऊंचे ते ऊंची उनकी प्राप्ति। विस्तार जितना करते जाओ, आप सब टीचर्स बहने जिज्ञासुओं को हम समझाते हैं, ये बातें हम औरों को बताते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे अपने अंदर अपने से बातें करो। जब अपने से बातें करेंगे तो वो अपनी अंदर की रूहानियत, आत्मा की शक्ति हमें अनुभव होती जाएंगी, जिस अनुभव से हमारे अंदर वो रूहानियत, दृष्टि में रूहानियत, सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, वृत्ति हरे के प्रति ऐसी शुद्ध, जिससे हम स्वयं भी अपने को आत्मा निश्चय करके चलने में सहज, वह हमारा संकल्प बना ही रहे, और जिससे मिले उन्हीं भावनाओं से मिलकर आपस में सदा खुशी और बाप की शक्ति का अनुभव करते चलें। इन्हीं शब्दों के साथ ज्ञान का विस्तार बाबा ने हमें बहुत दे दिया है, रोज की मुरली में हर एक दिन कोई न कोई बड़ी अच्छी बात हम याद करके उस पर अपना मनन चिंतन करते अपने जीवन में वो विशेषता भरते रहें। ऐसे हम स्वयं को अनुभवी बना करके उन्हीं अनुभवों के आधार से जो भी कोई परिस्थिति सामने आए उस पर विजय प्राप्त करते, स्वयं के लिए भी समाधान स्वरूप और सर्व के प्रति ये एग्जाम्पल बनकर आगे चलें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबने बड़े शांतिपूर्वक सभी चुस्त रहे, या कुछ निंद्रा ने भी खींचा, देखा अपने आप को, कभी कभी होता है ना, समझी हुई बातें होती है, बड़े अलबेलाई से हम सुनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी अलबेलापन छोड़ दो, कितना भी समझा हुआ हो, जब सिक्ख्याएं मिलती हैं खुले मन से बुद्धि का खजाना भरता जाए, उसके अंदर ये रतन भरते जाए, जिन रतनों को समय समय पर हम सहज रीति से यूज करते अपनी ईश्वरी पालना का सबूत देते रहें। ओम शांति शांति शांति।